नमस्कार मित्रगण, फिर एक बार स्वागत है रेडियो मधुबन के संस्कृत कार्यक्रम पठामी संस्कृतम में। मैं लीना महेंदले आज का पाठ लेकर के फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, हमने थोड़ा सा आत्मनेपदी क्रियाओं के विषय में समझा था कि उनके लकारों के रूप कैसे होते हैं। यह जो भेद संस्कृत में किया गया है, आत्मनेपदी क्रियाएं और परस्मैपदी क्रियाएं, इनका एक मोटा मोटा सा नियम है कि जिन क्रियाओं में अपने खुद के विषय में कुछ कहा जा रहा हो, जो हमने खुद किसी माध्यम से कोई चीजें हासिल की हों, या कुछ क्रियाएं जो हमारे अपने संबंध में घट रही हों, तो उनको प्रायः आत्मनेपदी वर्ग में रखा गया है। तो आज हम आत्मनेपदी क्रियाओं के कुछ उपयोग देखेंगे। ये सारे के सारे भूतकाल अर्थात लंग लकार में हैं और छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि लंग लकार के प्रयोग को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। मित्रों, आज का ये पाठ मैंने लिया है भारत संधान नामक संस्था के द्वारा जो पाठ चलाए जाते हैं उनसे ये पाठ मैंने लिया है। तो भारत संधान संस्था का आभार व्यक्त करते हुए इस पाठ को हम देखेंगे, जिसमें सारी की सारी क्रियाएं आत्मनेपदी और लंग लकार की क्रियाएं हैं। आओ देखते हैं। अहम जापान देशे सर्वेषां जनानां स्नेहम अलभे, अर्थात मुझे जापान देश में सारे जनों का स्नेह प्राप्त हुआ। उत्सवस्य दिने बालिकाः पुष्पैः स्वगृहम् अभूषयन्त, उत्सव के दिन बालिकाओं ने फूलों से स्वगृह को अर्थात अपने घर को सजाया। अस्माकं देशे बहवः उद्योगाः अवर्धन्त, हमारे देश में बहुत सारे उद्योग वर्धित हुए थे, बढ़े थे। अहम् अस्मिन् रविवारे मित्रैः सह बहु अमोदे, मैंने इस रविवार को, विगत रविवार को मित्रों के साथ बहुत आनंद उठाया। अमोदे अर्थात आमोद किया। राजा मंत्रिभिः सह अमंत्रयत, राजा ने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। भिक्षुकः जनेभ्यः भोजनम अयाचत, भिक्षुक ने लोगों से भोजन मांगा। शैशवे मह्यं दुग्धम न अरोचत, शैशव काल में अर्थात बचपन में मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था। तस्य द्वयोः पुत्रयोः पश्चात एका पुत्री अजायत, उसे दो पुत्रों के पश्चात एक पुत्री पैदा हुई। यः प्रभंजनस्य कारणात् वनस्य वृक्षाः अतीव अकंपन्त, यः अर्थात कल तूफान के कारण वन के सारे वृक्ष जोर जोर से कांप रहे थे, जोर जोर से डोल रहे थे। अस्माकं राजा अति दयालुः इति सर्वे अमन्यन्त, हमारा राजा बहुत दयालु है यह सभी ने मान लिया था। वृद्धावस्थायां तस्य पुत्रौ तम असेवेताम, वृद्धावस्था में उसके दोनों पुत्रों ने उसकी सेवा की। अब देखो, इस वाक्य में चूंकि पुत्रौ शब्द का प्रयोग किया गया है तो अलग से दोनों शब्द अलग से नहीं कहना पड़ा, पुत्रौ का अर्थ ही हुआ कि दो बेटे थे। तो संस्कृत में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे शब्द संख्या कम की जा सके, वाक्यों को छोटा किया जा सके, वाक्यों को सरल किया जा सके। तो द्विवचन का प्रयोग करने का एक कारण यह भी है कि द्विवचन के सभी वाक्यों में दो शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। शब्द की रचना से ही समझ में आ जाता है कि यह दो व्यक्तियों के बारे में या दो वस्तुओं के बारे में यह शब्द कुछ कह रहा है। ऐसे ही हमने दूसरा एक वाक्य देखा कि तस्य द्वयोः पुत्रयोः पश्चात एका पुत्री अजायत। तो यहाँ पर चूंकि पुत्रयोः शब्द ही द्विवचन दर्शाता है, तो हम यह भी कह सकते थे कि तस्य पुत्रयोः पश्चात एका पुत्री अजायत, और द्वयोः शब्द की आवश्यकता नहीं है। द्वयोः शब्द ना कहने से भी वही अर्थ समझ में आता जो द्वयोः शब्द रखने से हमें समझ में आता है। लेकिन आगे चूंकि एका पुत्री, एक लड़की के विषय में कहा गया, तो वाक्य का बैलेंस बनाने के लिए, वाक्य की मधुरता बनाने के लिए कभी कभी हमें कुछ दूसरी योजनाएं रखनी पड़ती हैं, दूसरी ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। तो द्वयोः पुत्रयोः इसलिए कहा गया ताकि आगे जो एका पुत्री कहा गया है उसके साथ उसका बैलेंस बना रहे। अगला वाक्य है, यूयम सर्वे तस्मिन् विश्वविद्यालये किम् अशिक्षध्वम्, तुम सबों ने उस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया था या क्या पढ़ाते थे। वयम् तत्र इतिहासम् दर्शनम् च अशिक्षामहि, हम लोग वहाँ इतिहास और दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। तो मित्रों, ये इस प्रकार कुछ छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि अलग अलग वचनों के लिए और अलग अलग पुरुषों के लिए, अलग अलग क्रियापदों के लिए लंग लकार के शब्द किस प्रकार बने हैं। अमोदे, अलभे, असेवेताम, अमन्यंत, अभूषयंत, अवर्धन्त, अमंत्रयत, अयाचत, अशिक्षध्वम, अशिक्षामहि, अरोचत, अजायत, अकंपत। ये शब्द मैंने इसलिए गिनाए हैं कि तुम इनको सोचो और पहचानने का प्रयास करो कि ये किस वचन को और किस पुरुष को दर्शाते हैं। जैसे अलभे, अलभे शब्द एक वचन और उत्तम पुरुष को दर्शाएगा। असेवेताम, इस शब्द को पढ़ने से ही समझ में आता है कि यह द्विवचन और प्रथम पुरुष को दर्शा रहा है। अभूषयंत, अवर्धन्त और अकंपन्त, ये तीनों ही शब्द प्रथम पुरुष के बहुवचन को दर्शाते हैं। अमंत्रयत, अयाचत, अरोचत, अजायत, ये सारे शब्द प्रथम पुरुष के एक वचन को दर्शाते हैं। अशिक्षध्वम, यह मध्यम पुरुष का शब्द आ गया जो कि मध्यम पुरुष के बहुवचन को दर्शा रहा है। और अशिक्षामहि, यह शब्द आ गया उत्तम पुरुष के बहुवचन से। तो इस प्रकार हम किसी क्रिया को या किसी क्रिया के किसी रूप को जब देखते हैं, इसे धातु रूप नाम दिया गया है संस्कृत व्याकरण में, तो जब भी हम किसी धातु रूप को देखते हैं तो उसके वचन, उसके काल और उसके पुरुष को हम अपने आप समझ लेते हैं और उससे हमारे वाक्य की रचना को और वाक्य के अर्थ को समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो यह हो गया हमारा आज का लंग लकार का आत्मनेपदी क्रियाओं का पाठ। और चलते चलते एक बहुत सरल, बहुत सुंदर श्लोक हम फिर से सीख लेते हैं। इसका अर्थ भी तुम्हें समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, मेरी माता राम ही हैं और पिता भी राम ही हैं। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, मेरे स्वामी भी राम ही हैं और मेरे सखा भी राम ही हैं। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुः, मेरा सर्वस्व रामचंद्र ही हैं जो बहुत दयालु हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम जाने अर्थात न अन्यम जाने, मुझे दूसरे किसी के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं किसी और को नहीं जानती। न अन्यम जाने, मैं किसी और को नहीं जानती, मैं किसी और को नहीं मानती। नैव जाने, बिल्कुल नहीं जानती। न जाने, नहीं जानती। ये बार बार जोर देने के लिए कहा गया कि मैं किसी और को नहीं पहचानती क्योंकि मेरे सर्वस्व ही रामचंद्र हैं। तो एक छोटे से सरल से श्लोक में हम एक बड़ी बात सीख सकते हैं। तो इस श्लोक को भी मुझे विश्वास है तुम याद कर सकते हो। तो आज हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अगले रविवार को फिर मिलते हैं। तब तक सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।